أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ پریزنٹیشنز کا سلسلہ ماہ مبارک رمضان کی لیالی قدر میں جاری ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کو قرآن میں کیا پسند ہے، اس پہ ایک پریزنٹیشن تھی، یحب اللہ لا یحب اللہ، کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. پھر ایک تھی خشیت اللہ کے اوپر، اور آج کا ٹاپک ہے آیت اللہ کے اوپر. سب سے پہلے میں یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج 8 اپریل بھی تھی، ابھی گزر گئی، آیت اللہ باقر الصدر کی شہادت کا دن تھا، تو آپ حضرات سے پہلے گزارش ہے کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، اور ہم اس کے آج کی رات کی عبادت کو سارا ثواب انشاءاللہ ان کی روح کے لیے کرتے ہیں. ایک ہدیہ عنایت کریں سورہ فاتحہ کا. تو یہ آئیڈیا ذہن میں یہ آیا کہ ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں کہ فلاں آیت اللہ سے ہم ملے، یا فلاں آیت اللہ کے ساتھ تصویر کھینچ لی، یا ان سے کوئی بات پوچھ لی، تو ظاہر ہے یہ ایک فخر کی بات ہے علماء کی محفل میں. لیکن جو آیات خدا، جو اصلی آیت اللہ یعنی ہمارے ہاتھ میں ہیں، یعنی قرآن کی آیات، اور اس سے اتنی زیادہ ہماری یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک وہ ویلیو نہیں دی جاتی کہ جو خدا نے ان آیات کو دی ہے. تو اس بارے میں جو قرآن میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ آیت کے بارے میں قرآن میں غور و فکر کیا جائے، اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ لوگ اس کو مزید آگے بڑھائیں. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی یا علامت، عربی کا اسم ہے، مؤنث ہے، اور پورے ایک جملے کو بھی آیت کہتے ہیں، اور جو گول پہ ختم ہوتا ہے نشان اس کو بھی آیت کہتے ہیں. کلام الہی کا ہر فقرہ، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، آیت ہے، اس کی جمع آیات ہیں. لیکن اس کے اور بھی معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا کام آیات کے سلسلے میں یہ ہے کہ آیات کی تلاوت خود خدا کا کام ہے. یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنایا جاتا تھا، اور اس میں یہ کئی آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، ہم نے آیات کو، یہ آیات اللہ ہیں جو ہم نے تمہیں پڑھ کے سنائی حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تم مرسلین میں سے ہو. تلک آیات اللہ، پھر یہ آل عمران ہے. اس کے ترجمے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں میں نے محسوس کی، لیکن آپ اس کو محسوس کریں کہ اللہ جگہ جگہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ آیات ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور آن اے سائڈ نوٹ، یہ بات بھی کہ یہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ثبوت اس کا کہ تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. ولا تخط بیمینک، اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے اور پڑھتے نہیں تھے، تاکہ یہ ثبوت ہو کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہیں، تم نے گڑھی نہیں ہے. کوئی تم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کہیں اور سے یہ کاپی کیے ہیں، یا سبق یاد کیا، یا کہیں سے آپ نے چرا لیے، یا پرانی معلومات کی بنیاد پر. تو اللہ یہ بار بار قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ نبی کا یہ نہیں جاننا، لکھنا یا پڑھنا، یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ قرآن کو پیوریفائی ثابت کر سکیں کہ یہ بالکل اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ آیت بھی سورہ عنکبوت میں بھی ایک موقع پہ موجود ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے سب سے پہلے کہ آیات کی وہ تلاوت کرے، اور ظاہر فرشتوں کے ذریعے کام کیا جاتا تھا کہ رسول اللہ کو یہ آیتیں سنائی جائیں. اس کے بعد رسول کا فریضہ قرار دیا کہ وہ آیات کی تلاوت کرے. تو آپ دیکھیں جیسے سورہ بقرہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو اس میں بھی آیات کی تلاوت اور تزکیے کا ذکر ہے. یہاں پہ اکثر ذاکری کے بہت نقطے لوگ نکالتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ वो कह रहे होते हैं ये पहले तस्किया है फिर किताब है, फिर ऐसी बात नहीं है। एक आयत में इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें कि तालीम दी किताब और हिकमत की और फिर तस्किया किया, और दूसरी में लिखा है कि पहले तस्किया, तस्किया का लफ्ज़ पहले कि किताब बाद में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़ाकरी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन खुदा की इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली जो अहमियत है वो इस बात की है कि रसूलों की ज़रूरत क्या है, रसूलों का काम क्या है, ताकि जब ये हदीस आपके सामने पढ़ी जाए कि उलमा वरसतुल अंबिया हैं, तो पता लगे कि इनका भी काम क्या होना चाहिए। जो उलमा हैं उनका भी काम वही होना चाहिए जो कि रसूलों का काम था। तो यहाँ पर सूरह जुम्मा जो मशहूर तरीन आप सबको याद है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम, तुम में से ही एक रसूल बनाया, यतलू अलैहिम आयात ही अल्लाह की आयात की तिलावत करता है, वज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लाल मुबीन, तुम से पहले गुमराही में थे। और इसी तरह सूरह आले इमरान में फिर रसूल का फ़र्ज़ बताया, लक़द मन्नल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि ये अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह का ये एहसान है मोमिनीन पर, जितनी भी नेमतें खुदा ने नाजिल की हैं, यानी खुद यानी नेमतें कुरान जो है बहुत बड़ी नेमत है, नेमतें विलायत अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ी नेमत है, उन नेमतों का जिक्र है कुरान में। तो यहाँ पर लकद मन अल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है मोमिनीन के ऊपर कि उसने रसूल को भेजा कि जो आयात की तिलावत करता है ताकि तस्किया नफ्स करें और किताब और हिकमत की तालीम दें। और उसके बाद एक और आयत है आले इमरान की, व कैफ तकफुरुन अंतुम तुतला, ये है एक एक्चुअली चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कैसे इनकार करते हो, कैफ तकफुरुन, क्यों कुफर करते हो जबकि तुम्हारे सामने रसूल इन आयत को तिलावत करके बयान कर रहा है। फिर तीसरे लेवल पर आयत की तिलावत लोगों की जरूरत है, लोगों को इसकी तिलावत करनी चाहिए, अतअमुरुन्नास बिलबिर्रि वतंसौन अन्फुसकुम व अंतुम तत्लून किताब। और ये भी एक अदब एक बताया गया है कि जब किताब की तिलावत की जाए और आप दूसरों को हुक्म देना शुरू करें तो अपने आप को नहीं भूल जाए, यानी शुरू अपने आप से करना है। तो आयत की तिलावत का अदब है ये कि आयत की जो तिलावत करेगा सबसे पहले वो अपने ऊपर नाफिज करेगा और उसके बाद वो दूसरों को, जो ये काम नहीं करता तो उसकी अकल को चैलेंज किया जा रहा है कि आपकी अकल में कुछ मसला है, अल्लाह कह रहा है फला ताकिलून, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि पहले खुद इस पे अमल करो फिर इसको कहीं लेके जाओ। इसके बाद अल्लज़ीना आतैनाहुल किताबा यतलूनहू हक्का तिलावत है, और फिर ये वो लोग हैं कि जो इस तरह तिलावत करते हैं जो तिलावत करने का हक है, यानी जैसे एक मिसाल ऊपर दी गई कि वो अपने ऊपर पहले अमल करते हैं फिर बाहर लेके आते हैं, इस तरह बहुत सारे हुकूक हैं तिलावत के, वो एक अलग पूरा टॉपिक है, यानी जिस जिस तरह खुदा ने आदाब बयान किए हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड का मतलब है कि लोगों की ज़रूरत है कि वो इसकी तिलावत करें, इसकी तिलावत किए बगैर गुजारा नहीं है। और उस जब वो तिलावत करेंगे लोग तो इन आयात की असरात हैं, कुरान ने जो बयान किए हैं, तो ये आयातुल्लाह हैं, अल्लाह की आयतें हैं और हमसे बहुत करीब हैं, हमारे घर में ही रखी हुई हैं, हम जब चाहे खोल के इनकी तिलावत कर सकते हैं। और आप ये देखें कि अंबिया की निशानियों में से, और हमारे लिए भी ये टारगेट है कि हमें इस लेवल पर पहुंचना है इंशाअल्लाह, कि जब उनके सामने रहमान की इजा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब आयात रहमान उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो दो काम, वो सजदे में गिर पड़ते हैं, लेकिन दो काम करते हुए कि रोते हुए और सजदे में गिर पड़ते हैं, यानी रोना और सजदे में जाना, ये निशानी है अम्बिया की, कि जो बड़े अम्बिया थे वो जब आयत खुदा तिलावत होती थी उनके सामने तो ये मजबूत असर होता था उनका। इसी तरह एक और जगह फरमाया सूरह अनफाल में कि सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं कि जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं, और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो ज्यादा तवक्कुल करने लगते हैं, वाला रब्बहिम यतवक्कलून, अपने रब पर एतमाद रखते हैं उन आयत को सुनकर। इन्हीं आयात का मनफी असर भी होता है, और जाहिर है ये नफ्स की हालत के ऊपर डिपेंड करता है। ये मनफी असरात हैं आयात को जो लोग इस तरह से सुनते हैं, वाइजा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफ फी वुजूहिल लज़ीना कफरू, ये लोग के जो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है और जब इनके सामने आयात पढ़ी जाती हैं, ये कुफर का मतलब टेक्निकल कुफर नहीं, यानी जिन्होंने दीन से दूरी यानी दीन का इनकार किया हुआ है, यानी प्रैक्टिकली बहुत दूर हैं, इनको नागवार गुजरती है सब चीजें कि कुरान क्यों पढ़ा जा रहा है। चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हो जाते हैं, और करीब, और ये वो वाले जो कुफार थे वाकई उस वक्त, तो वो तो हमला भी करते थे, बाद में बहुत सारे उनमें से इस्लाम ले आए, कि वो कुरान की तिलावत करने वालों पर हमला करते थे, ये तारीख में भी है और ये आयत में भी लिखा है कि ऐसे भी होते हैं कि जो कोई कुरान घर में पढ़ता है तो वो हमला कर देते हैं। इसके अलावा अगली अनफाल में 31, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनको ये कुरान की आयत तिलावत की जाती हैं तो कहते हैं कि हाँ सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानियां जो पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं। तो आजकल क्योंकि एक फैशन है कि हर आदमी कहता है कोई नई बात करो, तो कुरान भी उनको जो है ना वो पुरानी कहानियां लगता है। असातीरुल अव्वलीन, ये कुरान में कई जगह इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, ये पुराने लोगों के किस्से कहानियां हैं। इसी तरह एक नेगेटिव ये है कि फरमाते हैं कि ये बातें मनाते हैं आयात के बारे में, तो कहते हैं कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, दिल लगी कर रहे थे। तो क्या अल्लाह पूछ रहा है, क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल ही के साथ थी? यानी तुम्हें मजाक बनाने के लिए अल्लाह मिला है, रसूल मिला है और उसकी आयात, ये तीन चीजों का इस्तेहजा लोग करते थे, तो खुदा ने इस पे नाराजगी का इजहार किया। ये आयात जो हैं एक ऐसी किताब की है कि जो मुबीन है, ये बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ताकि ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये किताब समझ में नहीं आएगी, ये किताब वाजे नहीं है, ये बहुत कोई मुश्किल चीज है, ये बहुत ही कोई ऐसी चीज है जो आवाम के लिए नहीं है, इसको कोई खोल नहीं सकता, इसको कोई बयान नहीं कर सकता, जबकि ये तो रसूल अल्लाह जो है कुफार के सामने सुनाते थे। अभी आपने सुना मौलाना ही फरमा रहे थे, ये तो बद्दुओं के सामने जो कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी उनकी, उनके सामने सुनाते थे, उनसे कहते थे गौर फिक्र करो, अल्लाह ने सबको अकल दी है। और ये बार बार कुरान में तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात किताब मुबीन की है, मुबीन यानी वाजह, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन कई जगह, तिलका आयातुल किताब व कुरान मुबीन या तिलका आयातुल कुरान व किताब मुबीन, पलट पलट के एक ही बात की गई है। इसके बाद किताब भी मुबीन है, वाजे और रोशन है, और फिर जो आयात हैं अल्लाह की इस किताब के अंदर वो भी रोशन कर करके बयान की गई है, यानी आयतों पे अलग युबैयन कहा गया है। किताब भी मुबीन है, और आप देख लें बेशुमार इस तरह की आयतें मैंने कुछ लिखी हैं ना, कजाले का युबैनुल्लाहु आयत, कजाले का आयत लिन्नास युबैन। अच्छा अब उसके देखें एंड कैसे हो रही है, और अल्लाह चाह रहा है इन सब मंजिलों तक लोगों को पहुंचा दे। पहली मंजिल यत्तकून, के अगर तुम समझोगे कि ये आयतें वाजे हैं तो तुम तकवा के करीब हो गए, यानी तुम इन पे फिर गौर और फिक्र करोगे। या दूसरे वाला ताकिलून, तुम अकल इस्तेमाल करना शायद शुरू कर दो अगर तुम्हारी समझ में आयतें आयतों को तुम गौर और फिक्र शुरू करो, क्योंकि ये युबैयन है। फिर तस्किरा ये तज़क्करून, शायद तुम नसीहत हमारी कोई कबूल कर लो, ये आयाते बैनात हैं, व युबैनो आयाते हैं लिन्नास, लोगों के लिए खोल के बयान कर दिए हैं। उसके बाद लअल्लकुम तहतदून, शायद तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ अगर आयात को मुबीन मानो और इस पे गौर फिक्र करो। लअल्लकुम तशकरून, शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। कज़ालिक का युबैनुल्लाहु लकुम आयात ही वल्लाहु अलीमुन हकीम, क्योंकि वो अलीम और हकीम है, वो जानता है कि वो किसके लिए भेज रहा है इस कुरान को। ये कुरान कोई लाइब्रेरियों के लिए तो नहीं आया है, ये कुरान तो लोगों के लिए आया है, तो इसलिए उसने कज़ालिक का युबैनुल्लाहु लकुम आयातें खोल खोल के बयान की हैं। फिर सूरह नूर में वलकद अनज़लना इलैकुम आयातुम बैनात, और लकद अनज़लना आयातुम बैनात दो दफ़ा सूरह नूर में आया। बहरहाल ये स्लाइड का मतलब ये कि ये आयतें कुरान की बैनात हैं। इसके बाद एक और मतलब जो कुरान में आयात के बारे में आया है वो ये कि वो नफसिल और नसर्रिफ हैं। नफसिल कहते हैं कि तफसील से बयान कर रहा हूँ, नसर्रिफ कहते हैं पलट पलट के, जैसे मैंने भी पिछले स्लाइड में दिखाया कि एक ही बात को कई कई दफ़ा कई कई दफ़ा कि किसी तरह शायद ये बात जहन में इंसान के उतर जाए। तो सूरह यूनुस में फरमाया कि ये युफस्सिलो मा खलक अल्लाह ज़ालिका इल्ला बिलहक, युफस्सिल अल आयात लिक़ौमिन यअलमून, जो लोग जानने वाली कौम है जानना चाहती है उसके लिए ये आयात तफसील से बयान की गई है। फाइन ताबू वाकामुस्सलाता वातुज़्ज़काता फ़ाइख़वानकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यालमून। जो भी ये इल्म कुरान का लेना चाहता है तो ये आयात तफसील से बयान की गई है, इसमें कोई कमी नहीं है कि इसमें कोई चीज़ रह गई है, कोई अल्लाह ने नाउज़ु बिल्लाह, और अल्लाह ने नीचे लिखा फिर मुसर्रिफ़ भी हैं, यानी ये बार बार उलट पुलट के बयान की गई हैं ताकि आप कौमें शुक्रगुजार बन जाएं। अब आयत ये हो गई कुरान की आयतें। अब जो दुनिया के अंदर बाकी चीजें, यानी जो जिस जिस मायने में आए थे कि अल्लाह की निशानी है, तो ये एक मिसाल है इसके अंदर कि उनके नबी ने फरमाया कि इस सल्तनत के मिन जानिब अल्लाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा वगैरह वगैरह। तो ये आयत अल्लाह की निशानी के बारे में इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ इन्ना फी ज़ालिका लआयत लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो। फिर दूसरा माने आयत का, एक माना निशानी हो गया, दूसरा माना आयत का है नेमत के मायनों में। नेमत अगर किसी को दी गई है तो उसको भी अल्लाह ने आयत कहा है कुरान में, सल बनी इसराइला कम आतैनाहुम मिन आयतम बैना। यहाँ पर कितनी वाज़ह निशानियां बनी इसराइल को दी, यानी कितनी नेमतें, और आगे उसका वमा युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतुहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आ जाने के बाद बदल डाले तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तो आयत का एक और मफहूम अल्लाह की नेमत है। फिर आयत का एक और मफहूम इबरत है लोगों के लिए, कि जो आयत बयान की गई है वो इबरत है। और ये हजरत लूत का यहाँ वाकया है, और यहाँ लिखा हुआ है कि इन्न फी ज़ालिका लआयात लिल्मुतवस्समीन, और इसमें साहिबान होश के लिए निशानियां पाई जाती हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयत लिल्मुमिनीन, इसमें मोमिनीन के लिए निशानियां, यहाँ पर इबरत इससे, यानी कोई वाकया हुआ जिसमें के मोमिनीन के लिए इबरत है, तो उसमें भी आयत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फिर एक और मफहूम आयत का है मोजज़ा। अल्लाह जब किसी को मोजज़ा देता है तो उसके लिए भी लफ्ज आयत इस्तेमाल करता है कुरान में, कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम, दिखाया हमने आयात ही लअल्लकुम ताकिलून। तो यहाँ पर भी जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, उसके कातिल के बारे में झगड़ा करने लगे, जब खुदा उस राज का वाजे करने वाला जिसे तुम छुपा रहे थे, तो हमने कहा कि मकतूल को गाय के टुकड़े, ये मशहूर वाकया सूरह बकरा का। तो इस वाकये के बारे में अल्लाह ने इसको आयत कहा है, यानी ये जो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, यानी मोजा अल्लाह दिखाएगा यहाँ पर, इसको अपनी निशानी यानी मोजज़ा करार दिया, लफ्ज आयत व युरीकुम आयत ही लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम्हें कुछ अकल आए। वलकद अरसलना मूसा बे आयतना व सुल्तान, मूसा को बहुत सारी निशानियां दी, ये सब निशानियां यानी मोजे थे जो उनको दिए गए। तो एक मफहूम आयत का मोजज़ा निकलता है। इसके बाद बहुत सारे मफहूम आयत के वो है कि जो बुरहान और दलील से मुताल्लिक है, कि उसको देखकर अल्लाह पर ईमान लाओ, उसको देखकर अल्लाह की खिलकत पर, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की एहसान, अल्लाह का जो कुछ जलवा है अल्लाह का दुनिया में, वो इन दलीलों की बुनियाद पर खुदा ने जगह जगह बयान किया। मसलन एक जगह कहा वमिन आयात ही अन खलककुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरन तंतशिरून। एक आयत अल्लाह की ये है कि तुम सबको मिट्टी से पैदा किया, और फिर तुम देखो इंसान की मुख्तलिफ शक्ल व सूरत में बना के और फैल गए पूरी दुनिया में, कोई गोला है, गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है, कोई क्या है, सब अल्लाह के मौजज़े हैं। हर शक्ल जो अल्लाह ने बनाई है वो एक अल्लाह की आयत है, और कोई दोबारा नहीं बना सकता, यानी कोई और कोशिश करके भी इंसान की जैसी शक्ल नहीं बना सकता। फिर बताया कि वमिन आयात ही अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजन। एक अल्लाह की आयत दलील बुरहान जो है वो आपकी अजवाज हैं, जोड़े हैं, एक दूसरे के लिए स्पाउसेस हैं, और उसका भी वो फलसफा बता दिया, दे तस्कनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने, ये अल्लाह की निशानी है कि उनके दरमियान मवद्दत और रहमत डाली। इन्न फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यतफक्करून। जो कौम फिक्र करना चाहती है अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की आयात में, अल्लाह के जिक्र में, कुरान में, उनके लिए ये आयात हैं जो अल्लाह खोल के बयान कर रहे हैं। फिर एक और आयत में से बताया वमिन आयात ही, और उसकी आयात में है खल्क समावात वल अर्ज, ये दुनिया जो बनी हुई नजर आ रही है तुम्हें, ये बगैर किसी प्लानिंग के नहीं बन गई, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये सारे जमीन और आसमान और इनकी हरकतें, चांद सूरज सब कुछ, इन फी ज़ालिका लआयात लिल आलमीन, ये सारे आलम के लिए, एक आलम नहीं कई आलम है, सारी कहकशां गैलेक्सी जो कुछ यहाँ सब मुराद है। खलक समावात वल अर्ज से सब कुछ अल्लाह ने जो बनाया, ये अल्लाह की आयत है, ये अल्लाह की आयत है, ये आयतुल्ला है सब चीजें, और इसके अंदर निशानियां हैं पूरे आलम आलमीन के लिए, और कि देखो खुदा ने किस तरह इसको खल्क किया और किस तरह निजाम चल भी रहा है। यानी ये विलायत तकवीनी से, अल्लाह के हुक्म से, ये सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, चांद सूरज सितारे आसमान वगैरह वगैरह। फिर एक और आयत बताई कि वमिन आयत ही मनामुकुम बिल्लैल व नहार, ये जो रात और दिन बनते हैं, यानी जो चांद, ये जो सूरज की गर्दिश है उसकी तरफ इशारा है, ये भी खुदा की निशानी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यस्मऊन, जो गौर से सुनते हैं हमारी बातों को, उसके लिए दिन और रात में निशानी, हर चीज में खुदा है। दरख्त में देखें तो खुदा है, पत्ती में देखें तो खुदा है, चांद में देखें तो खुदा है, सूरज में देखें तो खुदा है, इंसानों की शक्लें देखें तो खुदा है, जोड़े जो बनाए, अब जोड़े वाकई इंसानों के नहीं है, हर हर चीज के जोड़े हैं, दरख्तों में भी जोड़े हैं जिससे कि आगे नस्ल चलती है, जानवरों में भी जोड़े हैं, हर चीज में दो दो बनाए हैं नर और मादे, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं कि एक प्लान के तहत ये पूरी कायनात चल रही है। फिर बताया कि ये जो बिजली कड़कती है, ये भी हमारी आयत है, ये भी आयतुल्ला है। वमिन आयत ही युरीकुमुल बर्क खौफन व तमा, ये दोनों का, एक ही बिजली चमकती है, दो काम करती है, कुछ लोग खौफ पैदा करते हैं, कुछ इसी से उम्मीद आ जाती है, यानी किसी को उम्मीद का मतलब है, दो तीन इसके मतलब निकाले जा सकते हैं, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा होता वो देख लेता है, जिसको बारिश का इंतजार होता है उसे उम्मीद आ जाती है कि अब बारिश होने वाली है, पानी इसमें लिखा भी है कि उसके बाद आसमान से पानी बरसाता है, और इसकी जो आवाज है और रोशनी है और जो कड़क है उससे खौफ भी आता है, तो ये भी अल्लाह की निशानी है, ये बिजली का कड़कना, इसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा बनाता है, और मुर्दा जमीन को जिंदा खुद, ये तस्किरा कुरान में बहुत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू कुफार उस वक्त जो समझ में बात नहीं आती थी, शायद आज भी नहीं आती, कि हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो वो कहते थे कैसे किया जाएगा, जब हम रमीम, क्या ना सूरह यासीन में, रमीम पाउडर बन जाएंगे, पाउडर बन के तो उड़ाते थे, मुट्ठी में लाते थे मुर्दों की मिट्टी को, रसूल के सामने फूंक मार के उड़ाते थे और कहते थे देखो ये रमीम बन गया, ये पाउडर बन गया, ये कैसे दोबारा जिंदा होगा। तो अल्लाह ने कहा देखो दरख्तों को, ये तुम्हें हर साल दिखाता हूँ, ये सारे दरख्त उजड़ जाते हैं, सब पत्तियां खत्म हो जाती हैं, जमीनें मुर्दा हो जाती हैं, घास खत्म हो जाती है, दरख्तों को हरियाली नहीं रहती, और फिर दोबारा मैं इसी मुर्दा को दोबारा जिंदा करता हूँ, ऐसे ही तुम्हें भी जिंदा करूंगा एक दिन, ये बार बार कुरान में जिक्र है, ये भी अल्लाह की आयत है, अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर एक और निशानी बताई, यही जो मैं बात कर रहा था इससे मिलती थी, कि जो सब सो रहे हैं आराम से, वमन आयत समा समाओ वल अर्ज अमरे सुम्मा इजा दाअकुम दावतु मिन अल अर्ज इन इजा अंतुम तखरुजून, इसकी निशानियों में से ये भी है कि आसमान और जमीन इसी के हुक्म से कायम, इसके बाद जब तुम सबको तलब करेगा तो सब यक बारगी बराबर हो जाएंगे। देखिए बहुत ही बारीक बात है कि हम एक एक करके नहीं उठाए जाएंगे, अल्लाह का अमर जब होगा, एक हुक्म होगा, और आदम से लेके और कयामत तक मरने वाले, कब्रों में सोने वाले, एक इशारे पे सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, तो आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी की मिल्कियत है, सब उसी के ताबे फरमान है, वही वो है जो खिलकत की इब्तिदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, और ये काम उसके लिए बहुत आसान है, यानी अल्लाह को बहुत मुश्किल नहीं होगी अल्लाह को ये काम करने में, कि ये इतने सारे लोग जो करोड़ों अरबों जमीनों में दफन है पूरी दुनिया में, कैसे इनको उठाए, इसके लिए बहुत आसान है ये काम, और इसीलिए आसमान और जमीन में सबसे बेहतरीन मिसाल है, वही सब पर गालिब आने वाला, ये अल्लाह की आयत है हमारा जमीन से उठना। इसके बाद कहा अमिन आयात रिहा मुबशरात, यानी ये जितनी भी हवाएं चल रही हैं खुशखबरी बनाते बन के आती हैं कि बारिश आएगी, उसके बाद बारिश भी आती है, फिर बारिश से पानी भर जाता है, फिर पानी में हम कश्तियां चलाते हैं, कश्तियां भी उसके हुक्म से चल रही हैं जो बैलेंस होता है इसका, और उन्हीं से रिस्क भी हासिल करते हैं, ये सब आयतुल्ला है, ये सब आयतुल्ला है, अल्लाह की निशानियां हैं, पानी का बरसना, हवाओं का चलना, फिर पानी का बरसना, फिर हम कश्ती बनाने काबिल हुए, फिर कश्ती को लेके पानी में चलते हैं, ये सब खुदा की निशानी है। इसके बाद ये निशानी है कि या बनी आदम कद अनजलना लकुमल लिबास, हमने लिबास तुम्हारे लिए नाजिल किया है, यानी पैदा किया है, ये लिबास जो है ये तुम्हें ढांपता है, ये भी अल्लाह की निशानी है। और उसके बाद जो एक इशारा किया है कि ये लिबास तो जाहिर है इंसान बना लेता है अपने हाथ से, लेकिन ये भी खुदा की दी हुई निशानी है, लेकिन बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है, यानी एक मानवी बात की जा रही है यहाँ पर। तो दोनों किस्म की चीजें आ गई कि जाहिरी लिबास वो भी अल्लाह की आयत है, और जो असल लिबास है वो तकवा है, ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है कि शायद इससे कोई तस्किरा हासिल हो, यानी नसीहत हासिल हो, कोई सबक हो, लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। इसके बाद आयतें दिखाता भी है अल्लाह अपने खास बंदों को, और आयत कुबरा का भी जिक्र है कुरान के अंदर। ये जो सूरह असरा की पहली आयत है मशहूर तरीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दही लैला मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात परवरदिगार जो अपने बंदों को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और उस माहौल को बाबरकत बनाया ताकि अपनी बाज निशानियां दिखलाएं। ये मेराज की मुतालिक आयत है, और फिर सूरह नजम में भी ये आई कि हमने मेराज की शब अपने रब की बड़ी निशान रब्बेल कुबरा। अच्छा, आयत आयत कुबरा इमाम अली अलैहिस्सलाम का लकब भी है बाय द वे, दुआ में भी आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि आयत आयतुल कुबरा है व नबाइल अजीम। ये दोनों चीजें जो है ना, आयतुल कुबरा कुरान का टाइटल है और नबाइल अजीम ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के टाइटल भी है। और इसके बाद मूसा के लिए भी कहा कि ले नुरिया का मिन आयत, हम तुम्हें अपनी आयतें दिखाएंगे, और फिर दी उनको वो आयतें, और फिर मूसा ने वो आयतें जाके दिखाई फिरौन को, फराहुल आयतल कुबरा, और आयत कुबरा दिखाई मूसा ने, उसके बाद भी वो ईमान नहीं लाया। तो आयतें दिखाई भी जाती हैं। आयात को बेचने वाले लोग भी होते हैं जिसकी कुरान ने मजम्मत की है और बताया है कई जगहों पर, ये जैसे ऊपर मैंने सूरह बकरा कि हमने जो कुरान तुम्हारी तौरेत की तस्दीक के लिए भेजा है उस पर ईमान ले आओ, और सबसे पहले काफिर ना बन जाओ, हमारी आयतों को मामूली कीमत पर ना बेचो, हमसे डरते रहो। और बेचने का तरीका क्या होता है कि अगर वो सारी बात बातिल करे तो कोई नहीं खरीदेगा, वो हक के लिबास में होते हैं, और हक और बातिल को मिक्स करते हैं, और अल्लाह ने पकड़ ली इस बात को और ये लिख दिया कुरान के अंदर, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को मिक्स नहीं करो, व तक्तुमुल हक्का, और हक को जानबूझकर ना छुपाओ, अंतुम तालमून यानी जानबूझकर, तुम्हें मालूम है, अंतुम तालमून तुम्हें इल्म है, और फिर भी तुम उसका तिकमान कर रहे हो यानी छुपा रहे हो, तब तुम हक का नहीं छुपाओ। इसी तरह अश्तरू बे आयातिल्लाह समनन कलीला, छोड़ी सी कीमत के लिए आयात जो है ना नहीं बेचो, तुमने ये क्या किया, उन्होंने अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, क्योंकि जब वो कीमत ले लेते हैं तो वही फिर जहां इंसान को जाना है, जहां पूरी कम्युनिटी को जाना है, फिर उसी के रास्ते में वो सद्दे राह बन के खड़े रहते हैं, यानी जो मानवीय सफर है वो नहीं हो पाता लोगों का, वो सर्किल में घूम रहे होते हैं, क्योंकि जिन लोगों को वो आयतें बयान करनी थी, जिनको वो उन आयतों की तालीम देनी थी, वो उसके बदले कीमत ले लेते हैं और इसके गलत मायने लोगों को बताने लगते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि कितना बुरा काम है जो ये कर रहे हो। आयात को जो झुठलाएगा यानी जो अपने अमली मंजिल में नहीं लेकर आएगा, वो उसको फासिक कहा गया है एक एक जगह पर, वह यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, आयात का हमारी इनकार कोई नहीं करेगा सिवाय फासिक के। और दूसरी जगह कहा गया कि वो झुठलाने वाले काफिर होते हैं, यानी उस काफिर तो कहते ही झुठलाने वाले को है, लेकिन जो भी आयात का इनकार करेगा कुफर इख्तियार करने वालों को गुरो दर गुरो जहन्नम की तरफ हंकाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये एक जगह फासिक कहा गया, एक जगह काफिर कहा गया, जो आयात अल्लाह की आयात को झुठलाएगा। और फिर जगह जगह उनकी सजा बयान की गई है, वल्लजीन कफरू कद्दबू बे आयातेना उलाय का असाबुन नार, वल्लजीन कफरू कद्दबू आयातेना उलाय का असाबुल जहीम, असाबुन नार भी हैं, असाब जहीम भी हैं, और फबशिरहुम बे अजाबिद अलीम भी हैं। और जो भी आयतों को अल्लाह की आयात को झुठलाएगा, इसमें शक पैदा करेगा, उसकी कीमत वसूल करेगा, उसको लोगों को अमल करने से रोकेगा, उसके बारे में जगह जगह की कहानियां बनाएगा, कुछ भी करेगा, मुश्किल समझ में नहीं आएगी, जरूरत नहीं है देखने की, ये सब वो बातें हैं जो कुरान से दूर करती हैं कौम को। ये लोग, इनके बारे में शदीद अजाब कुरान में बयान किया गया है। और जो लोग इस पे नुक्ताचीनियां करते हैं, अल्लाह की आयात पर जो एतराज करते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि आप इनसे दूर हो जाएं, इनको ज्यादा आप वक्त अपना इन पे जाया नहीं करें। ऐ मोहम्मद, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयात पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं, तो उनके पास से हट जाओ, यहां तक कि वो उस गुफ्तगू को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर अगर कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे, तो यानी वहां बैठे रह जाएं, तो जिस वक्त तुम्हें याद आए फिर वहीं उसी वक्त उठ जाओ। ऐसे जालिम, इनको जालिम भी कहा है कि जो आयतों के ऊपर एतराज करते हैं, यखूजूना, यखूजूना यानी एतराज करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, अल्लाह के प्लान्स के खिलाफ अपने प्लान बनाने वाले। और ये आखिरी कि इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि जिन लोगों को भी खुदा ने कुरान में ये लिख दिया है कि जिनको हमने इमाम और पेशवा करार दिया है, उनकी दो निशानियां बताएंगी कि पहली निशानी ये कि वो सब्र करने वाले हैं, लम्मा सबरू व कानू बे आयात ना यूकिनून, और हमारी आयात पर ईकान की मंजिल पर हैं, वो यकीन रखते हैं। तो जो इमामत और क्यादत करना चाहता है आज भी, उसको सबसे पहले दो काम करने चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह की आयात पर ईकान की मंजिल पर आ जाए। और मेरा ख्याल है ये आखिरी स्लाइड थी। आप सबके तवज्जहात का बहुत बहुत शुक्रिया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात।